जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 88 और 89। 88 का तात्पर्य नहीं है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आपना लोकाइते कृष्ण नाना जतन करे तथापि ताहार भक्त जानाए ताहारे। भगवान श्री कृष्ण अपने को अनेक प्रकार से छिपाने का प्रयत्न करते हैं तो भी उनके भक्त जान लेते हैं कि वे कहाँ हैं। यहाँ कृष्णा विराज चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये समझा रहे हैं कि वे भगवान हैं और अनेक शास्त्रों से पुष्ट कर रहे हैं कि भगवान हैं। और अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान की एक विशेषता ये भी है कि वे अपना प्रचार नहीं करते, अपना विज्ञापन नहीं छपवाते कि हम भगवान हैं। लेकिन जो झूठे भगवान हैं वो अपना विज्ञापन छपवाते हैं कि हम भगवान हैं और अपने अनुयायियों को कहते हैं कि प्रचार करो, जा जा करके हर जगह प्रचार करो कि भगवान पैदा हो गए, भगवान प्रकट हो गए, है कि नहीं। तो इस तरह से जो झूठे भगवान हैं अपना प्रचार करते फिरते हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्ण तो अनेक प्रकार के यत्न से अपने को छिपाने का अपने को छिपाते हैं और जो भक्त हैं वो जान लेते हैं भगवान को। किस बल पर जानते हैं कृष्ण को? जान लेते हैं किस बल पर? भक्ति के बल पर। जो भक्ति है वो भगवान से ज्यादा बलवान है। भगवान अपने को छिपाने का प्रयास करते हैं, जो भक्त हैं अपने भक्ति के बल पर भगवान को जान लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। अब ये श्लोक पढ़िए। उल्लिखित त्रिविध सीमा समातिशाई संभावनम तब परिब्रघ्म स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिन् अनिशं त्वत् अनन्यभावं। उल्लिखित त्रिविध सीम समातिशाये उल्लिखित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परी ब्रढ़ में स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम पश्यन्ति केचिदनिशं तदन्यभावम्। उल्लिखित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परी ब्रढ़ में स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम पश्यन्ति केचिदनिशं तदन्यभावम्। उल्लिखित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परी ब्रढ़ में स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम् पश्यन्ति केचिदनिशं तदन्यभावा। बोलिए करना, ये उल्लंघित है, उल्लंघित हिंदी में गलत छपा है, उल्लंघित त्रिविध स्थिति में समाधि साइन। बोलिए माताएं। अच्छा अनुवाद बोलिए मेरे पीछे। हे प्रभु, प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी शक्ति से ढक लेते हैं, तो भी आपके भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यह श्लोक भी यामुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न 13 से लिया गया है। इसके पहले वाला जो श्लोक था 87वां जो श्लोक था वो भी यामुनाचार्य का स्तोत्र रत्न 12 था और ये 13वां है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये 13वां श्लोक है यामुनाचार्य के स्तोत्र रत्न से। आगे, माया के प्रभाव से आवृत प्रत्येक वस्तु देश काल तथा विचार की सीमाओं में बंधी है, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति आकाश की भी सीमाएं हैं। किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि आकाश से आगे भी 7 आवरण हैं और इनमें से हर एक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक मोटा होता जाता है। आवरण की ये परतें विस्तृत हैं किंतु आकाश सीमित है, चाहे आवरण हो या नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक आकाश है ये बंद है, आकाश खुला नहीं है। वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि आकाश खुला हुआ है बिल्कुल, लेकिन आकाश वास्तव में ये क्या है, बंद है। और ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इसकी एक सीमा है, एक नाप है, 50 करोड़ योजन का विस्तार है। 50 करोड़ योजन में 8 से गुणा करें तो मील बन जाएंगे, तो 50 में 8 से गुणा करोगे तो 400 हो जाएंगे, तो 400 करोड़ मील के विस्तार का ये ब्रह्मांड है ना। और ये ब्रह्मांड जो है बंद है, 10 आवरण है, 7 आवरण है और एक दूसरे से 10 गुने मोटे हैं आवरण। पहले पृथ्वी का आवरण है, उससे 10 गुना जल का आवरण है, उससे भी 10 गुना अग्नि का आवरण है। इस प्रकार से क्रम से जो है आवरण मोटे होते जाते हैं, 7 आवरण से घिरा हुआ है। तो ये आकाश सीमित है। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, देश तथा काल विषयक हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित है। काल शाश्वत है हम करोड़ों तथा अरबों वर्ष की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह काल के विस्तार का अपर्याप्त अनुमान होगा। तो प्रभुपाद जी सरल शब्दों में यहाँ कुछ गहराई है, तात्पर्य में गहराई है। मैं सरल शब्दों में इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि देश काल और विचार, ये तीन चीजों का कोई अंत नहीं है। ये तो देश का मतलब है स्थान, कितना स्थान है, कोई अंत नहीं है स्थान का, है ना, कोई अंत ही नहीं है। अगर ब्रह्मांड के बाहर जाओ तो भी कितना स्थान है कि नहीं। आध्यात्मिक जगत है, वो भी स्थान है। तो अपनी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते कितना स्थान है, असीमित है। उसी प्रकार से काल, काल को हम समझ नहीं सकते, असीमित है। मतलब भूतकाल में आप कितना विचार करो, भगवान जी कहते हैं कि करोड़ों अरबों वर्ष की कल्पना भी आप करो तो भी उससे भी पीछे काल था, है कि नहीं। तो काल का भी जो है ना कोई शुरुआत नहीं है और काल का अंत नहीं है, है ना। समय कब शुरू हुआ था, आपकी बुद्धि से परे है ये विषय। इसी प्रकार से विचार, विचार का मतलब है वस्तुओं का ज्ञान, कितनी वस्तुएं हैं, कितने जीव आत्माएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, इनकी भी कोई संख्या नहीं है। आप चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। तो देश काल और विचार तीनों की दृष्टि से हर चीज इस भौतिक जगत में कैसी मिथ है ना। कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, वो स्थान उसका सीमित है, हर स्थान में आप नहीं हो सकते, है कि नहीं। और उसी प्रकार से समय, समय भी सीमित है आपका, हर समय आप याद नहीं कर सकते, प्रत्येक समय को आप याद नहीं कर सकते, आप नहीं जान सकते। और विचार, विचार का मतलब है प्रत्येक विचार, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। असंख्य जीव हैं, आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देश काल और विचार ये तीनों की दृष्टि से हर चीज सीमित है, और भगवान इन सीमाओं से परे हैं। भगवान के बारे में ये नहीं कह सकते आप कि भगवान इस स्थान में है, इस स्थान में नहीं है, आप नहीं कह सकते। स्थान से सीमित नहीं है भगवान। इस श्लोक में यामुनाचार्य जो कह रहे हैं कि आप जो है किसी स्थान से सीमित नहीं है, कि आप के बारे में कहा जाए कि इस स्थान में तो आप का अधिकार है और बाकी स्थान में आपका अधिकार नहीं है, नहीं। हर स्थान में भगवान का अधिकार है और हर स्थान में भगवान मौजूद है। उसी प्रकार से काल, कोई भी समय ऐसा नहीं था जब कहा जाए कि भगवान नहीं थे या भगवान नहीं जानते थे उस समय, उस समय की बात नहीं जानते थे, ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय को भगवान नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं या नहीं जानेंगे, है ना। न तो हम जातु नासम न तुम नहीं मेरे नाम दिखा, भगवान ने कहा कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था। तो भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं। तो काल से सीमित नहीं है भगवान, आगे भी जो है ना नचे बिना भविष्यामः, आगे भी जो है ना भगवान अपने बारे में बताते हैं कभी ऐसा समय नहीं होगा कि जब मैं नहीं रहूंगा, है ना। तो भगवान जानते हैं हर समय को, काल से सीमित नहीं। और विचार भी, विचार मतलब हर वस्तु का विचार भगवान करते हैं, हर वस्तु का भगवान पालन करते हैं और जानते हैं हर वस्तु को, हर जीव को जानते हैं भगवान, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान सीमित हैं विचारों में, विचारों में सीमित हैं, कि शायद कोई ऐसी घटना हो ही हो कि भगवान उसको नहीं जानते। प्रत्येक घटना को जानते हैं भगवान, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक घटना को जानते हैं भगवान, किसी विचार में सीमित नहीं है भगवान। तो तीन चीजों से भगवान जो है वो लंघित है,
उल्लंघन कर चुके हैं। तो यहां ये समझा रहे हैं प्रभुपाद जी ने। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः हमारी अपूर्ण इंद्रियां ना तो भगवान की महानता के विषय में सोच सकती हैं, ना ही हम उन्हें काल या अपनी चिंतन शक्ति की सीमाओं में ले सकते हैं। तदनुसार उनकी स्थिति उल्लंघित शब्द से वर्णित की जाती है। मतलब भगवान उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन मतलब उल शब्द ही बना है, उत से, उत माने ऊपर, उल्लंघन का मतलब पार करते हैं, उसको पार करते हैं, ऊपर से भगवान हर चीज को पार करते हैं। देश, काल और विचार तीनों की सीमाओं को भगवान ऊपर से पार कर जाते हैं। भगवान नहीं सीमित हो सकते, देश, काल और विचार तीनों के द्वारा उल्लंघित हैं भगवान। वे देश, काल तथा विचार से परे हैं, यद्यपि वे उनके भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु वे रहते हैं उनसे परे। जहाँ हाँ लगता है कि वे उनके अंदर हैं, जैसे कृष्ण जब लीला करते हैं तो लगता है कि वो वृंदावन में हैं, है ना। तो वृंदावन भारत के अंदर है और भारत के और वृंदावन के अंदर कृष्ण है, तो कृष्ण लगते हैं कि सीमित हैं, वृंदावन में हैं, वृंदावन से बाहर हैं कृष्ण, कृष्ण वृंदावन से बाहर नहीं है और वृंदावन भारत से बाहर नहीं है, है कि नहीं। जो भारत है ये पृथ्वी से बाहर नहीं है, तो कृष्ण तो देश की सीमा के अंदर है कि नहीं। उसी प्रकार से काल, हाँ 5,000 साल पहले कृष्ण थे, कृष्ण की लीलाएं थी, तो अब तो नहीं है, तो काल के द्वारा भी सीमित मालूम पड़ते हैं कृष्ण। और विचार, विचार कृष्ण अपनी लीलाओं में मस्त हैं, तो ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं जानते कृष्ण, तो ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा लगता है, यद्यपि वे उनके भीतर प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण देश, काल और विचार के अंदर सीमित है, ऐसा लगता है, प्रतीत होते मतलब ऐसा मालूम पड़ता है, किंतु वे रहते उनसे परे हैं। देश, काल और विचार की सीमा में नहीं है कृष्ण। वृंदावन लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि वे उसके बाहर नहीं है। वे सब प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में ही निवास करते हैं, बाहर नहीं। या गोलोक धाम से आए तो गोकुल में आ गए, तो गोकुल में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, लेकिन फिर भी सब प्राणियों के हृदय में भी विराजमान है, तो उल्लंघन कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कृष्ण के अचिंत्य ये सब गुण हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जहां भगवान का अस्तित्व देश, काल तथा विचार से छिप जाता है, वहीं भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें देश, काल तथा विचार से परे उनके साकार रूप में देख सकते हैं। तो जो भक्त हैं वो कृष्ण की महिमा को समझ लेते हैं कि सीमित नहीं है, ना तो कृष्ण की लीलाएं किसी स्थान में सीमित हैं, ना किसी समय में सीमित हैं, और ना किसी विचार से सीमित हैं। कृष्ण की लीलाएं हर देश में होती हैं, हर समय होती हैं, और हर वस्तु में जो है ना कृष्ण की लीलाएं व्याप्त हैं। जो भक्त हैं वो समझ पाते हैं इस बात को। यद्यपि दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्तियों की आंखों से नहीं दिखते, किंतु जो लोग आवरणों से परे हैं वे तब भी अपनी दिव्य भक्ति से उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में माया का पर्दा पड़ा हुआ है, कृष्ण माया का पर्दा डाला हुआ है, इसलिए कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा है 7वें अध्याय का 25वें श्लोक, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, योग माया से अपने को मैं छिपा लेता हूं, इसलिए सबको मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। मूढ़ोयम ना भी जाना थी लोको मामजम अभियम, जो मूर्ख है हा? तो माया से जो ना मूर्ख बना हुआ जो व्यक्ति है वो नहीं जानता है मामजम अभियम कि मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मतलब देश काल से परे हूं, नहीं जान पाते हैं। लेकिन अपनी दिव्य भक्ति से भक्त उनको देख लेते हैं, दिव्य भक्ति से देख लेते हैं। ऐसा श्लोक है कहीं गीता में, भक्तिया माम अभी जान आती यावान में तत्वतः, भक्ति से जान लेते। तो कृष्ण अपनों को माया से छिपाते हैं, लेकिन जो भक्त है अपनी भक्ति के बल पर भगवान को जान लेता है। तो इस तरह से यहां पर भक्ति की योग्यता ज्यादा बताई जा रही है इस श्लोक में, भगवान से ज्यादा योग्यता भक्त के अंदर है कि भक्त भगवान अपने को छिपाने का प्रयास करते हैं और भक्त जो है फिर भी भगवान को समझ लेता है। वो कहता है कि तुम अपने को छिपाने का प्रयास करते हो, तुम छिप नहीं सकते। तस्या अहम ना प्रणश्यामि, उससे मैं छिप नहीं सकता हूं। तो भक्ति की शक्ति जो है भगवान से बढ़कर के एक दृष्टि से, आखिर भक्ति भी भगवान की ही है, भगवान की ही एक शक्ति है भक्ति भी, लेकिन एक दृष्टि से भक्ति जो है भगवान से बढ़कर के है, भगवान उसमें बंध जाते हैं, भगवान उससे छिप नहीं पाते हैं भक्ति से। ये अब यहाँ रूपा जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं सूर्य बादल से आच्छादित दिख सकता है, दिखाई देता है सूर्य कि बादल से ढका हुआ है, लेकिन क्या सूर्य बादल से ढका है? नहीं, बादल तो कुछ भी नहीं है सूर्य के सामने, है कि नहीं? बादल कुछ भी नहीं है सूर्य के सामने, तो सूर्य दिखाई देता है कि बादल से ढका है, लेकिन वास्तव में हमारी आंखें ढकी हैं बादल से, है कि नहीं? हमारी आंखें ढकी हैं, जैसे कि मेरा हाथ मेरी आंखों के सामने आ जाए तो मैं सोचता हूं कि आप ढक गए, मेरी मेरे हाथ से आप ढक गए, मैंने आपको ढक दिया अपने हाथ से, क्या आपको ढका मैंने? नहीं, मेरी आंखें ढकी हैं। मैं कहता हूं मैंने आपको ढक दिया, आपको कहां ढका मैंने? इसी प्रकार से बादल से हमारी आंखें ढकी हैं, सूर्य थोड़ी ढका है, सूर्य के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता बादल से, उसका प्रकाश तो फैल रहा है, सब जगह फैल रहा है, वो थोड़ा सा हिस्सा है सूर्य के प्रकाश का जिसको बादल ने ढका है, है कि नहीं? वो कुछ भी नहीं है, सूर्य का जितना प्रकाश है उसकी तुलना में वो बादल ने जो ढका है प्रकाश को वो कुछ भी नहीं है, है कि नहीं? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सूर्य बादल से आच्छादित दिख सकता है, लेकिन यह तो लघु मानव की आंखें हैं जो बादल के नीचे होने से आच्छादित हैं, ना कि सूर्य। यदि यही लघु मानव हवाई जहाज से बादल के ऊपर जाए तो वह सूर्य तथा धूप को बिना अवरोध के देख सकता है, है कि नहीं? तो हवाई जहाज से अगर आप ऊपर जाएं, बादल के ऊपर जाएं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सूर्य को देखने में, है ना? तो यहां पर भक्ति की तुलना की गई किससे? भगवान की तुलना की गई सूर्य से, ठीक है ना? और माया की तुलना की गई बादल से, ठीक है? भगवान की तुलना की गई सूर्य से और माया की तुलना की गई बादल से। जिस प्रकार से सूर्य सूर्य को सूर्य बादल के कारण आप सूर्य को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार माया से ढके होने के कारण आप भगवान को नहीं जान पाते, देख पाते हैं। लेकिन आप भक्ति की तुलना प्रभुपाद जी किससे कर रहे हैं? भक्ति की तुलना प्रभुपाद किससे कर रहे हैं? जैसे आप सूर्य को देख सकते हैं कैसे? अगर बादल है तो भी आप सूर्य को देख सकते हैं कैसे? प्रभुपाद बताएं तात्पर्य में, सूर्य को फिर भी कोई व्यक्ति देख सकता है अगर बादल बदली है तो भी सूर्य को आप देख सकते हैं कैसे? हवाई जहाज के ऊपर बैठ करके। आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से? नहीं सुन रहे? हवाई जहाज से जो है आप बादल के ऊपर जाकर के सूर्य को देख सकते हैं। तो भक्ति की तुलना किससे की है? हवाई जहाज से। जो भक्ति है ये हवाई जहाज की तरह है, जो माया से ऊपर आपको पहुंचा देती है और आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तुलना है। शास्त्रों में तो ये तुलना नहीं मिलती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति हवाई जहाज पर बैठता नहीं था उस समय। प्राचीन काल में कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी विमान पर बैठता था। विमान होते थे तो कुछ विशेष योगियों के लिए होते थे या देवताओं के लिए होते थे, सामान्य व्यक्ति के लिए विमान नहीं होते थे। हालांकि शास्त्रों में जो बताए गए विमान वो आधुनिक विमान थे, बहुत अच्छे कोटि के थे, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति तो नहीं इस्तेमाल कर पाता था विमान को। सामान्य व्यक्ति तो आकाश में गमन नहीं कर सकता था, लेकिन अभी तो सामान्य व्यक्ति भी आकाश में गमन करता है। तो इसलिए ये तुलना जो है जो प्रभुपाद ने दी है ये शास्त्रों में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी जो ग्रंथ है ये जो है नए तरीके से प्रभुपाद जी ने शास्त्र लिखे हैं। जो भक्ति है वो हवाई जहाज के समान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसी प्रकार माया का आवरण यद्यपि प्रबल होता है किंतु भगवत गीता में 7:14 भगवान का कथन है। 7:14 सातवें अध्याय का श्लोक संख्या 14 क्या है? देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या बामे विजय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंदिते। इस त्रिभुवमयी मेरी माया को जीत पाना कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं इस सरलता से इसके पार चले जाते हैं। तो माया की तुलना बादल से की गई है और कृष्ण की शरण लेना मतलब भक्ति है? तो भक्ति के द्वारा जो है आप माया रूपी बादल से ऊपर उठ सकते हैं और सूर्य रूपी भगवान का आप साक्षात्कार कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं, और क्या उपाय? अगर खूब घना बादल हो है ना तो सूर्य को देखने का और कोई उपाय है? हवाई जहाज में जाना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार से जब आप माया में बंधे हुए हैं, माया से ढके हैं, तो भगवान को जानने का उपाय और क्या है? और कोई उपाय है भक्ति के अलावा? नहीं, और कोई उपाय नहीं है। तो मामे भी ये प्रपद्यन्ते जो मेरी शरण में आए हैं। आप प्रभुपाद लिखते हैं माया के प्रभाव को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं वे माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। है ना? तो कृष्ण के चरणों या कृष्ण के चरणों की धूल कि में जो अगर आप आसक्ति हो गई तो फिर आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ कृष्ण का प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण अपने चरणों से अलग तो नहीं हो सकते, कृष्ण के चरणों की धूल भी जो है ना आपको कृष्ण तक ले जाएगी, क्योंकि वो कृष्ण चरणों की धूल भी जो है ना कृष्ण से अलग नहीं होती है कि नहीं? आपके चरणों की धूल तो आपसे अलग हो जाती है, कृष्ण के चरणों की धूल भी आपको कृष्ण तक पहुंचा देगी, है ना? यहां प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए शुद्ध भक्त भगवान को समझ सकते हैं, किंतु असुरगण अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अनेक शास्त्रों एवं ईश्वर के असामान्य कर्मों को देखते हुए भी भगवान को समझ नहीं सकते। तो यहां प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं या कृष्णदास कविराज की बात को प्रभुपाद समझा रहे हैं। इतने शास्त्रों में लिखा भी है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इतने शास्त्रों में लिखा होने के बावजूद भी और उनके असामान्य कर्म भी हैं चैतन्य महाप्रभु के, इतना सब होने के बावजूद भी जो असुर हैं वो नहीं समझ पाएंगे भगवान को कि वे भगवान या कृष्ण भगवान हो। और अपने को भगवान समझेंगे या किसी और को भगवान बनाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे समाप्त करना है क्लास और इसकी गोष्ठी है, तो 5-7 मिनट के लिए आप लोग चर्चा कर सकते हैं या मैं प्रश्न करूं। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, ठीक है मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहां पर भगवान को जो बताया गया है कि देश काल और विचार की सीमा से परे हैं, इसका मतलब क्या है? इस श्लोक में भगवान को बताया गया है कि भगवान देश काल और विचार की सीमा से परे हैं, इसका अर्थ क्या है? देश का मतलब यहां पर क्या है? स्थान। देश का मतलब ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान, ये नहीं, स्थान। तो देश से परे हैं भगवान, देश की सीमा से परे, इसका मतलब क्या है? हर जगह। लेकिन और कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती कि आप कह सको कि भाई हर जगह है? नहीं, आप तो नहीं कह सकते। आप यहां बैठे हैं तो अपने घर में भी नहीं है और कहीं नहीं, आप उस सीमित है। लेकिन भगवान देश से सीमित नहीं है कि भगवान को कहो भाई भगवान तो जो है ना इधर है तो और कहीं नहीं है और दूसरे स्थान में नहीं है। भगवान देश की सीमा से बंधे नहीं है। अच्छा, और दूसरा क्या है? काल। काल की सीमा से बंधे नहीं भगवान, इसका क्या मतलब है? समय। हाँ, इसका मतलब भगवान समय से सीमित नहीं है, इसका मतलब क्या है? और हर वस्तु समय से सीमित है, इसका मतलब
भगवान
नहीं, वो तो दूसरी बात है, सबके ज्ञात है, वो दूसरी बात है, वो आगे और आगे की बात है। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं कि भगवान समय से सीमित नहीं है, इसका मतलब क्या है? समय के द्वारा सीमित नहीं है भगवान की लीलाएं, में भगवान समय से सीमित नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ, शाश्वत। हाँ, शाश्वत है, मतलब कोई समय ऐसा नहीं था जब आप कह सकते हैं कि भाई उस समय भगवान नहीं थे, है ना? लेकिन आप तो कह सकते हो, आपका जन्म हुआ अभी, है ना, उसके पहले आपको पता नहीं है। हालांकि जो जीव आत्मा है वो भी ऐसे ही है, समय की सीमा से परे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका शरीर है वो तो समय के द्वारा सीमित है, किसी तारीख को पैदा हुआ था और किसी तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो ये समय से सीमित है। लेकिन भगवान का शरीर भी जो है समय की सीमा से बंधा नहीं है, कि भगवान का शरीर जो है कभी पैदा हुआ था। लेकिन हाँ, मूर्ख लोग कहते हैं क्या भगवान का शरीर पैदा हुआ, कैसे प्रकाश से पैदा हुआ? कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, उनका भौतिक शरीर है, खून मांस का बना हुआ, ये तो बहुत मूर्ख है। कुछ लोग बड़े आगे बढ़े हुए अपने को सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञान में आगे बढ़े हैं, तो कहते हैं कि भगवान का शरीर तो दिव्य है, उनका शरीर खून मांस का बना नहीं है, लेकिन तो भी वो निराकार से साकार हुए, पहले निराकार थे। आप कुछ कहें? नहीं, वो दूसरी बात है, हर जगह व्यापक है, वो दूसरी बात है। हर समय भगवान जो है, भगवान का जो रूप है, भगवान के गुण हैं, भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं हर समय जो है होती हैं, हर समय, प्राचीन काल में चाहे कितने भी पीछे जाओ, कितने पीछे जाओ, कोई ऐसा समय नहीं था कि जब भगवान का नाम नहीं था, रूप नहीं था, गुण नहीं थे, लीलाएं नहीं थी, हर समय थी और आगे भी कभी बंद नहीं होने वाला है ना। तो ये हुआ समय से परे हैं। और तीसरी बात क्या है? विचार। भगवान विचारों से परे हैं, मतलब विचारों की सीमा से बने नहीं है, इसका मतलब क्या है? भगवान विचारों की सीमा से परे हैं, मतलब बंधे नहीं हैं, इसका मतलब? मतलब हर वस्तु को जानते हैं भगवान, हम नहीं समझ सकते, हर व्यक्ति को जानते हैं। इसको पुष्ट किया भगवान ने गीता में, कहें वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। सब प्राणियों को जो पहले भी हुए अभी भी हैं और जो आगे होंगे उन सबको मैं जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। विचार भगवान की सीमित विचार नहीं, भगवान प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की प्रत्येक घटना को जानते हैं, जबकि आप एक दिन की भी सब बातें नहीं जान पाते हैं, भूल जाते हैं। चौरासी लाख योनियों में भी जितने जन्म हैं, जितने जीवों के, सब जीवों के जितने जन्म हैं सब जन्म, चौरासी लाख योनियां तो बहुत थोड़ी हैं, है ना, इन चौरासी लाख योनियों में भी जितने जन्म हुए हैं, असंख्य जन्म हुए हैं आपके, आप गिन भी नहीं सकते आपने कितने जन्म लिए हैं, और प्रत्येक जन्म की कितनी घटनाएं हुई उनको भी आप गिन नहीं सकते हैं, असंख्य घटनाएं हुई, और कितने जीव हैं उनकी संख्या भी नहीं गिनी जा सकती, कितने जीव हैं, असंख्य जीव हैं, और प्रत्येक जीव के असंख्य जन्म हैं, और प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की असंख्य बातें हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है वो असंख्य 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 असंख्य, भगवान परे हैं इनसे। हैं युक्ति तर्क, हाँ यहां पर विचार मैं सरल ढंग से समझा रहा हूँ, सरल ढंग से समझा रहा हूँ कि ज्ञान, आप विचार को ज्ञान समझ लो, तो भगवान किसी ज्ञान में सीमित नहीं है। तो इनका प्रश्न है कि हम तो अपूर्ण हैं, तो हम जब सोते हैं तो जाग नहीं पाते हैं, और जब जागते हैं तो सो नहीं पाते, लेकिन भगवान अगर पूर्ण है तो किस तरह से एक साथ सोते हैं और एक साथ जागते हैं। अगर भगवान पूर्ण है तो उनके ज्ञान में ही सब कुछ है, अगर भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास अज्ञान नहीं है, है? जैसे कोई व्यक्ति है अगर सब कुछ जानता है तो वो अज्ञानी भी बन सकता है, कोई व्यक्ति अगर बहुत शिक्षित है तो वो चाहे तो मूर्ख बन सकता है, और जब चाहे तो मूर्ख भी बन सकता है, नहीं जो मूर्ख है वो शिक्षित नहीं बन सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान अगर जागते हैं तो वो सोने का आनंद ले सकते हैं, वो भूलने का आनंद ले सकते हैं, उनकी जो योग निद्रा है तो वो मतलब एक दिव्य निद्रा है जिसमें कि भगवान सोते भी हैं और जागते भी हैं। ये जो तीनों पुरुषावतार हैं भगवान के, कारुणदक्ष साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक्ष साई विष्णु, तो तीनों ही विष्णु सोते हैं और सोते सोते ही पूरे जगत का पालन करते हैं। ये जो कार्य है, जगत के पालन का कार्य है, उनके लिए इतना आसान है, ये सोते सोते भी कर सकते हैं भगवान, जबकि हाँ। तो लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, अपने घर का भी अगर पालन करता है तो उसके लिए बड़ी भारी सिरदर्दी हो जाती है, कितनी चिंता हो जाती है, लेकिन भगवान इस संसार के जितने भी जीव हैं, थलचर हैं और नवचर हैं और जलचर हैं, इन सब का पालन कर रहे हैं और सोते सोते कर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। सर्वस्वता हम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाह, तो भगवान सो रहे हैं क्षीर सागर में और तो भी सबके हृदय में बैठे सबको स्मृति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कितना आश्चर्य है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ हम किसी जीव की ऐसी तुलना कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये समझ लो कि भगवान के पास अगर संपूर्ण ज्ञान है तो उसमें अज्ञान की उनको आवश्यकता नहीं है, है? अज्ञान तो एक प्रकार का जीरो है, है ना। अगर आपके पास हजारों रुपए हैं तो जीरो भी है। इस श्लोक में चर्चा हुई है कि भगवान काल से सीमित नहीं है, तो इस संबंध में मेरा एक लेख है, श्री भगवान ने कहा भाग 52, जिसमें इस श्लोक की व्याख्या है, न ते वाहम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा। तो इसमें मैंने लिखा है, सर्वप्रथम कहा गया है न तो एव अहम न आसम, अर्थात ना तो ऐसा है कि किसी समय मैं नहीं था, इन शब्दों में गहराई का कोई अंत ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रत्येक समय की अपनी प्रत्येक बात को जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय वे नहीं थे। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही यह बात कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिसमें श्री कृष्ण के पास यह ज्ञान नहीं था। यह बात श्री कृष्ण अपने लिए अलग से कह रहे हैं कि वे सता रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्थिति में सता रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण सीधे ऐसा भी कह सकते थे कि वे पूर्व में सदा थे, फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब वे नहीं थे। जिस प्रकार यदि किसी स्थान में अनेक लोगों को भोजन खिलाया गया हो तथा यदि यह कहा जाए कि सभी को भोजन खिलाया गया, तो फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति बच गए हों जिन्होंने भोजन ना खाया हो। परंतु जब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे भोजन ना खिलाया गया हो, तो यह बात अच्छी प्रकार से निश्चित हो जाती है कि सभी को भोजन खिलाया गया है। उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण यह कहते कि वे पूर्व में सदा थे, तो अनेक मूर्खों को ये कहने का अवसर मिल जाता कि यद्यपि श्री कृष्ण पूर्व काल में थे, परंतु फिर भी कभी ऐसा भी समय था जब श्री कृष्ण नहीं थे। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जब देवकी के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, तो समय वे एक ज्योति से प्रकट हुए थे। दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत महाभारत के सीरियल में ऐसा दिखलाया भी गया है कि कारागार के अंदर रात्रि के अंधकार में देवकी और वसुदेव ने देखा कि खिड़की के अंदर एक प्रकाश का पुंज आया तथा उससे श्री कृष्ण बन गई। इसका अर्थ यही हुआ कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पूर्व एक निराकार ज्योति थे। एक दृष्टि से तो यह प्रस्तुतिकरण अच्छा है कि श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका शरीर खून हड्डी और मांस का बना हुआ नहीं है, क्योंकि उनका शरीर एक ज्योति से बना है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है यह प्रस्तुतिकरण गलत है, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पूर्व निराकार ज्योति थे। गीता 7:24 में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यामुनाचार्य का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ है, हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के बस में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त कर्ण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। तो श्लोक यामुनाचार्य का था जो प्रभुपाद ने उद्धृत किया। आगे श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पूर्व वे देवकी के गर्भ में थे तथा उस समय भी ब्रह्मा तथा शिव आदि समस्त देवताओं ने कंस के कारागार में आकर श्री कृष्ण की परमेश्वर के रूप में स्तुति की थी। इसके भी पूर्व श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में थे तथा उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में सातवें पुत्र के रूप में स्थित बलराम जी को वह रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। इस प्रकार हमें समझना है कि श्री कृष्ण अपने नाम रूप गुण तथा लीलाओं के साथ अपने धाम में सदा निवास करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, न तुम नहीं जनाधिपा, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें तुम और ये सभी राजागण नहीं थे। अब यहाँ पर एक अंतर है, जब श्री कृष्ण अपने विषय में कोई बात कहते हैं तो वह बात उनके शरीर और आत्मा दोनों के लिए लागू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। परंतु जब अर्जुन तथा अन्य राजाओं की बात आती है तो यह बात उनकी आत्माओं के लिए है जो अपने कर्मों के कारण अपने शरीरों को बदलते रहते हैं। परंतु अर्जुन की स्थिति फिर भी अन्य राजाओं से अलग है। यद्यपि अर्जुन एक जीवात्मा है तथा श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है, परंतु फिर भी शुद्ध भक्त होने के कारण वे सदा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। गीता के 4:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन विस्मरणशील जीवात्मा होते हुए भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि वे प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि पूर्व काल में श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के घर में मूर्ति देवी के पुत्रों के रूप में
नारायण तथा नर के नाम से जन्म लिया था। जिस समय नर नारायण का जन्म हुआ उस समय संपूर्ण विश्व में आनंद छा गया। प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो गया। उस समय सभी दिशाएं प्रसन्न थीं। वायु सभी को सुख प्रदान कर रहा था और नदियां तथा पर्वत अनेक प्रकार के रत्न प्रदान कर रहे थे। उस समय स्वर्ग लोक में बाजे बजे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे तथा स्वर्ग की अप्सराओं ने नृत्य किया। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगलकारी चिन्ह प्रकट हुए तथा ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने धर्म के घर में नर के साथ नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया है। हे भगवान, आपने समस्त जगत की आपत्तियों को मिटाने के लिए तथा शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए ही अवतार लिया है। आप हम देवों पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इस प्रकार देवताओं पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर नर नारायण गंधमादन पर्वत पर चले गए। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, वे ही नर तथा नारायण ऋषि इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस समय कुरु वंश में अर्जुन तथा यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण की समीपता में रहने के कारण इस भौतिक संसार में सदा सुरक्षित रहते हैं, जबकि अन्य जीवात्माएं कर्म के अनुसार शरीर बदलते हुए जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े हुए हैं। यहाँ पर युद्ध भूमि में उपस्थित समस्त राजाओं की बात से श्री कृष्ण उन असंख्य जीवात्माओं की ओर संकेत कर रहे हैं जो अनादिकाल से अपनी अतिरिक्त इच्छाओं के कारण प्राकृतिक नियमों की तरंगों द्वारा बहते हुए विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए जीवन संघर्ष करते रहते हैं। विकास प्रक्रिया के दौरान हमें यह मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है जो हमें स्वर्ग लोक तक या मुक्ति तक या निम्न योनियों तक या पुनः मनुष्यों के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। भागवत 7:13-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक मनुष्य अपने विविध इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तब तक वह निरंतर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस प्रकार एक घास का तिनका नदी में गिर जाता है तो वह तरह तरह के काष्ठ और पेड़ की टहनियों के साथ बहता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा गण भवसागर में तैरते रहते हैं और भौतिक दशाओं में टक्कर खाते तथा उछलते रहते हैं। यही जीवन संघर्ष है। एक प्रकार के सकाम कर्म से जीव को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से किए गए कर्मों से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए किन भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दे और ऐसा अवसर मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो पाता है। हमें अपनी कार्य शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए क्योंकि तब भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करें क्योंकि वे इन्हें पूरा करना जानते हैं। अतः भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी मनुष्य को भक्त की सेवा में लग जाना चाहिए, इससे उसका जीवन संघर्ष शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में ये राजागण नहीं थे। शास्त्रों से कई व्यक्तियों के विषय में यह पता चलता है कि इनमें से कौन व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में क्या था। जैसे दुर्योधन को कलयुग का अवतार तथा शकुनी को द्वापर का अवतार बतलाया गया है। दुर्योधन के दुशासन आदि जितने भाई थे वे सभी विभिन्न राक्षस गण थे। भीमसेन 49 मरुद गणों में से एक थे। नकुल और सहदेव सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमारों के अवतार थे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र बुध थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अवतार थे। भीष्म जी देव नामक वसु थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। इस श्लोक में भगवान मायावादियों के तर्क का खंडन कर रहे हैं। मायावादियों का कहना है कि एक ब्रह्म ही सत्य है तथा जो अलग अलग जीवों की विविधता दिखाई दे रही है वह मिथ्या है तथा माया द्वारा कल्पित है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि हम सभी भविष्य में नहीं रहेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे कि उनकी आगे चलकर क्या गति हुई। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन है कि जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं समाप्त करना चाहते थे उस समय वे प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट किया था, उनका तेज धुएं रहित अग्नि के समान संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर कर रहा था। वे मेघ के समान श्यामल तथा त्रिवत्स का चिन्ह धारण किए हुए थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान थी। उनके सिर पर घने काले और घुंघराले केश थे। उनके नेत्र कमल के समान अत्यंत सुंदर थे। कानों में मकर की आकृति वाले कुंडल शोभा दे रहे थे। रेशमी वस्त्र धारण किए तथा अत्यंत सुंदर करधनी, जनेऊ और मुकुट से शोभायमान थे। हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, गले में अत्यंत सुंदर हार तथा चरणों में नूपुर धारण किए हुए थे। उनके गले में कौस्तुमणि अत्यंत शोभायमान थी। उनके आयुध अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म देवताओं के रूप में उन्हें घेर कर बैठे हुए थे और उनका बायां पैर, जिसका तलवा लाल कमल के समान था, उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था। तभी जरा नामक शिकारी, जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। यह सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, उसने उस पांव को अपने तीर से भेद डाला। तत्पश्चात भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा और वह भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। मैंने अनजाने में ही यह पाप किया है। हे शुद्धतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। उस समय भगवान के आदेश से स्वर्ग से एक विमान आया और शिकारी को स्वर्ग में ले गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस बाण ने भगवान के चरण कमल का स्पर्श मात्र ही किया था, बेधा नहीं था, क्योंकि भगवान के अंग सच्चिदानंद रूप हैं। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी ने बताया होता कि बहेली ने भगवान के चरण से अपना तीर निकाला। उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती तथा समस्त देवता आकाश में अपने अनेक विमानों की भीड़ लगाकर अत्यंत भक्ति के साथ फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान का शरीर योग अग्नि में जलने योग्य नहीं था, बल्कि उनका दिव्य शरीर संपूर्ण जगत का सर्व आकर्षक आश्रय है तथा योगियों के ध्यान का लक्ष्य है। इसलिए भगवान अपने उसी शरीर के साथ वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान कृष्ण को अपने धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके। इस प्रकार भगवान प्रकृति के नियमों से परे होते हुए भी अपनी ऐसी माया शक्ति प्रदर्शित करते हैं, जिससे मूर्ख लोग ये सोचें कि भगवान ने अपना शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तरह त्यागा है। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने नित्य शरीर में ही अपने धाम लौट गए, जिसकी पुष्टि समूचे वैदिक साहित्य में हुई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।